मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आज 5 अगस्त 2020 है और डेफिनेटली यह तारीख अब भारतीय इतिहास की एक विशेष तारीख बनने जा रही है। ऐसा क्यों, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परसों मैं और मेरी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब मुझे लाइफ मैनेजमेंट में किन विषयों को उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि वे भी चूंकि युवाओं की काउंसलिंग करती हैं तो जीवन से संबंधित समस्याओं से रूबरू होती रहती हैं, तो इस विषय पर हम लोगों की बातचीत होती रहती है। इनफैक्ट उन्होंने जो तुरंत बात कही वह मेरे बिल्कुल हृदय के गहरे तक उतर गई और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन होने जा रहा है, आप राम पर ही अपनी कुछ बातों की शुरुआत क्यों नहीं करते। दरअसल फ्रेंड्स, राम और हनुमान की कथा को लेकर, कथा कह लीजिए या उनके संबंध में जो विचार होते हैं वो कह लीजिए, उसको लेकर के मेरे साथ शायद 2011 की बात है, अमेरिका और कनाडा में मेरे लगभग 35-40 लेक्चर हुए थे और उसमें मैं और मेरी पत्नी प्रीति दोनों ही गए थे और उन्होंने उस समय मेरे सारे लेक्चर्स सुने हैं। साथ ही जब भी भारत में अलग अलग जगहों से आमंत्रण आता है उसमें भी वो मेरे साथ जाती थी, तो उन्होंने लेक्चर सुन रखे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी जो अवसर है उस अवसर में राम पर बात करना बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक होगा। और सच पूछे तो मुझे जो आप राम के बारे में बताते हैं वो थोड़ी सी नई बातें भी लगती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसी विषय पर शुरुआत करें। तो मित्रों, उनके इस इच्छा या यूं कह लीजिए आदेश को सर माथे पर लेते हुए मैंने फिर यही निर्णय लिया कि नहीं, बहुत अच्छा विचार है और इस पर कुछ बातें की जानी चाहिए, क्योंकि अभी जो देश का वातावरण है राम के बारे में काफी रिसेप्टिव है। हालांकि हमेशा राम के बारे में यह देश रिसेप्टिव ही रहा है, यानी कि बहुत ही स्वीकारात्मक मुद्रा में ही रहा है। तो आइए अब कुछ एपिसोड में राम के बारे में कुछ नई बातें, संभवतः नई बातें हो तो आप जान सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राम को लेकर के मैंने बाकायदे एक किताब लिखी है और उसका शीर्षक है आप भी बन सकते हैं राम। दोस्तों, सच पूछिए तो यह हिंदुस्तान ही है या भारतीय चेतना ही है या भारतीय धर्म दर्शन, जो भी आप कह लीजिए, उसकी महान उदारता है कि वो मुझ जैसे व्यक्ति को अपनी किताब का यह शीर्षक रखने की इजाजत देती है कि आप भी बन सकते हैं राम। इसका मतलब है कि क्या मैं भी राम बन सकता हूं, क्या आप भी राम बन सकते हैं, क्या वह भी राम बन सकता है, क्या हर कोई राम बन सकता है, और अगर हर कोई राम बन सकता है तो फिर राम में ऐसी क्या बात है कि हम उन्हें भगवान माने, क्योंकि हर कोई बन सकता है। आप सोच करके देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि राम को समझने के लिए, राम को ही नहीं बल्कि हमारे यहां बाद में कृष्ण हुए या जो भी इस तरह के अवतार हुए हैं, उन्हें समझने के लिए भारतीय चेतना का जो स्वरूप है, उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उसे जरूर समझा जाना चाहिए। और एक बार जब हम उसकी चेतना के तत्व को, या बेहतर होगा कि हम शब्द का इस्तेमाल करें, सत्य को, इसेंस को समझ लेते हैं, तो फिर जिनके बारे में भी हम पढ़ते हैं या समझना चाहते हैं, आप देखेंगे कि उनके बारे में बिल्कुल नए नए कोणों की झलक हमें मिलने लगती है, एंगल्स मिलने लगते हैं। और ये मान करके चलिए कि जितने ज्यादा एंगल्स मिलेंगे वह साहित्य, वह चरित्र, वह धर्म, वह दर्शन उतना ही ज्यादा क्लासिकल कहलाने लगता है। क्लासिकल का मतलब ही है समय से परे, यानी कि जो सार्वकालिक है, अपने समय को वो रिफ्लेक्ट करता है, अपने समय को आवाज देता है, और जब आप उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो आपको अपने समय की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान उसमें दिखाई देने लगते हैं। राम ऐसे ही एक चरित्र है, चरित्र कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, आपकी छूट है, क्योंकि ये हिंदुस्तान ही है जो इस तरह की छूट हमें देता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको इस अवसर पर कम से कम भारतीय दर्शन, भारतीय चेतना या भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, उस पर थोड़ा सा रुककर विचार तो करना ही चाहिए। क्या कारण है कि यह सनातन कहलाता है? क्या कारण है कि हमने ईश्वर को अवतार के रूप में लिया है? आप देखिए कि ईश्वर को अवतार के रूप में लेने का मतलब क्या है। मतलब यह कि ठीक है, राम त्रेता युग में हुए तो वो अपने युग के नायक रहे, हमने उन्हें भगवान मान लिया, लेकिन जब हम द्वापर में पहुंचते हैं तो ये लगने लगा कि नहीं, अब हमें एक नए भगवान की जरूरत है, तो हमारे सामने कृष्ण आ जाते हैं। ये अवतारवाद है। अवतारवाद का मतलब ही मुझे कभी कभी ये लगता है कि अपने समय के अनुकूल जो नायक बन सके। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि सच में हम ईश्वर के स्वरूप में इतने परिवर्तन ला सकते हैं? और परिवर्तन भी कोई सामान्य नहीं है। आप राम और कृष्ण को अगर सामानांतर रूप में रख करके देखें तो आपको दोनों में बहुत ज्यादा विविधता दिखाई देगी। विविधता क्या, बल्कि सच यह है कि आपको बहुत से विरोध दिखाई देंगे, और इन दोनों के विरोध के बावजूद दोनों आज हमारे लिए पूज्य ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, देवता हैं, हमारे देश के नायक हैं, हमारी चेतना के अंग हैं और हमारे संस्कृति की आत्मा हैं। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, मुझे लगता है कि हमें समझना ही चाहिए। मैं जब अपने ईश्वर के बारे में सोचता हूं कि मेरा ईश्वर कौन है, तो सच पूछिए तो मैं जो परंपरा से चली आ रही चीजें हैं उनसे उनको परिभाषित नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि हां, वहां से मैंने ये चीज ले ली, वहां से मैंने ये चीज ले ली, अद्वैत दर्शन से मैंने ये ले लिया, सांख्य से मैंने ये ले लिया, गौतम बुद्ध से मैंने ये ले लिया, फलाने से मैंने ये ले लिया, पुराण से मैंने ये ले लिया, भागवत कथा से ये ले लिया, भगवत गीता से ये ले लिया, अच्छा वेद से ये ले लिया, और उन सबको लेकर के एक मधुमक्खी की तरह उन पर बैठा, थोड़ा थोड़ा रस लिया, और इन सबको करने के बाद मैंने अपना शहद बना लिया, मैंने अपने ईश्वर की रचना कर ली। भले ही उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो सब दर्शन की ही बातें हैं, लेकिन जो मेरा ईश्वर है वो मेरा ईश्वर है, मेरे द्वारा गढ़ा गया है। आप सबके ईश्वर अपने अपने के द्वारा गढ़े गए हैं, ये बात अलग है कि मुख्य धारा की चीजें ही उसमें शामिल हैं। ये आजादी हिंदुस्तान ने दी है, भारतीय दर्शन ने दी है, भारतीय चेतना की आजादी है। और दोस्तों, इसी चेतना की आजादी ने सच पूछिए तो भारतीय धर्म और दर्शन को सनातन बनाया है। और इसी चेतना का जो एक सगुणात्मक प्रतिबिंब, यानी कि सगुण के रूप में जो हमें आकार के रूप में दिखाई दे रहा है, वे राम हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इतने बड़े डेमोक्रेटिक अप्रोच का दर्शन और कहीं होगा। आप देखिए कि ईश निंदा की बात हमारे यहां कहीं नहीं आई है, कहीं भी नहीं आई है कि ईश निंदा करना कोई महापाप है, घोर पाप है। गुरु निंदा के लिए तो बात कही गई है कि नहीं करिए, लेकिन ईश निंदा के लिए आप देखिए कि कहीं रोक टोक नहीं है। दोस्तों, क्या आपको ये सामान्य सी बातें लगती है? मुझे लगता है कि जब कोई चीज आसानी से हमें मिलती रहती है तो शायद हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। संघर्ष के बाद जब मिलती है तो हमें पता लगता है कि अरे बाप रे, ये इतना अनमोल है। तो ये जो राम है, मित्रों, आज मुझे यही अपनी बात समाप्त करनी होगी कि हमारी अब तक की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो हमारा धार्मिक, आप यूं कह लीजिए कि भाव है, या कह लीजिए कि जो दर्शन शास्त्र का रस है, यहां तक कि हमारे जीवन प्रणाली की जो विविधता है, उन सब का एक प्रकार से साकार रूप है राम। आगे भी हम लोग इस पर बात करेंगे, और बेहतर होगा कि आप सब भी अपने अपने विचार दें तो उससे मुझे और अपनी बात को बेहतर तरीके से करने का सहारा मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज राम जन्मभूमि पूजन है। इस अवसर पर मैं अपने एकेडमी के अपने सभी मित्रों की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से, आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से न केवल भारतवासियों को ही बल्कि पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पूरे के पूरे विश्व में जो उनकी अपनी चेतना रही है, लोकतांत्रिक चेतना, जन कल्याण की चेतना, उसका संचार करें। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।